ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय मोहन भाई जी पधारे हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम सबका बहुत सौभाग्य है जो साकार बाबा और मम्मा की पालना में पले हुए भाई जी, विशेष आज जो भट्ठी का क्लास है ना, भट्ठी का नाम ही है अंतिम पुरुषार्थ योग तपस्या भट्ठी, और बाबा ने जो अंतिम महावाक्य उच्चारण किए, कौन से? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो ब्रह्मा बाप समान कैसे बने? भाई साहब बहुत सुंदर विषय लेकर हमारे बीच में आए हैं। जब आप 1962 में संस्था के संपर्क में आए, तब ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया था। आपने ONGC में 28 इयर्स सर्विस की है और आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया 1996 में। तब से आप पूर्ण रूप से समर्पित रूप से बाबा की सेवाएं संभाल रहे हैं। आपका पूरा ही परिवार समर्पित ही, जैसे कहो, आप सभी को पता हो यहाँ पांडव भवन में जो सीनियर बहनों का डाइनिंग है, वहाँ गीता बहन जी थे, आपके ही लौकिक बहन जी थे, तो पूरा ही परिवार समर्पित रूप से ही चला है और हमारे जैसी कई कन्याओं को समर्पित भी किया है। जब हम ज्ञान में चले तो भाई साहब अहमदाबाद में ही थे, ONGC में, वहीं पर उनकी जॉब थी। तो क्लास के पश्चात जैसे इंस्पायर करना, उमंग उत्साह भरना, ये जीवन का महत्व समझाना, ये भाई साहब का कार्य रहा है। आपने कई स्थानों पर बाबा के सेवा केंद्र खोलने के भी आपने मित्र बने हैं, बिहार, आसाम, गुजरात, कई सेवा केंद्र आपने खोले हैं। वर्तमान समय आप एकेडमी के कोऑर्डिनेटर हैं, जो ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड है। आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग के चेयरपर्सन भी हैं। आपने 10,000 से भी अधिक लेक्चर्स लिए हैं नॉन बीकेएस के लिए, बीकेएस के लिए, और भाई साहब को जिस प्रकार बचपन से हम जानते हैं, भाई साहब के लिए कहना चाहूंगी कि स्नेह और समर्पण की प्रतिमूर्ति है आप। विद्या की विद्वत्ता है जिनके पास, सरलता और सम्मान भरा व्यक्तित्व है आपका, प्रबंधन में कुशल, हर काम में मर्यादा, हर बात में सत्कार, यही है आपकी पहचान। आदरणीय भाई साहब, ब्रह्मा बाप समान निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी कैसे बने? ओम शांति।
ओम शांति। वर्तमान समय ये ममा का मास चल रहा है और हम सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा वैसे अक्सर कहा करते थे कि भले ब्रह्मा बाबा नंबर 1 है, जैसा शिव बाबा ने कहा है, लेकिन मामा है 1+, यानी बाबा से भी आगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो डबल इंजन, जैसे वर्तमान समय लौकिक में भी कहते हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ये दोनों बाबा की एक्स्ट्रा मदद ब्रह्मा बाबा को रहती थी। भले शिव बाबा कहते थे कि ब्रह्मा बाबा उसे अपना पुरुषार्थ तो करना ही है, और ये नहीं कि शिव बाबा मैं उस तन में आया हूँ तो कुछ उसे एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएंगे, नहीं, भले एक्स्ट्रा कुछ मदद मिल जाए, लेकिन पुरुषार्थ किए बगैर तो वो नंबर वन आ भी नहीं सकता। तो उस रीति से ब्रह्मा बाबा जहाँ वन फर्स्ट थे तो ममा को बाबा खास वन प्लस कहा करते थे। क्यों? क्योंकि ममा बाबा का जितना भी ममा का पुरुषार्थ होता था वो टोटल बिल्कुल अपना पुरुषार्थ होता था। भले शिव बाबा ने जो कहा ममा उसे तुरंत करते थे, लेकिन ममा का वो करना जो होता था वो टोटल उनके आधार पर ही होता था, अपने ही पुरुषार्थ के आधार पे। हमें याद है ये नीचे हिस्ट्री हॉल है ना, वहाँ ऐसे ही तीन संदलियाँ पड़ी रहती थी और एक संदली पर तो बाबा ब्रह्मा बाबा आते थे राइट साइड में सबसे किनारे, उस संदली पर वो बैठते थे, लेफ्ट वाली संदली पर ममा बैठते थे और बीच वाली संदली खाली रहती थी। गुरुवार के दिन संदेशी आके भोग लगाती थी और जब भी कोई पार्टी आती थी तो पार्टी वाले आके वहाँ पर वन बाई वन पुरुषार्थ क्या करने का उनका विचार है वो बताते थे, और जब जाने का दिन होता था तो क्या पुरुषार्थ की रूपरेखा लेकर बना करके वो जा रहे हैं वो बताया करते थे। इस तरीके से ये वहाँ पर बाबा मम्मा और बीच में बच्चे बैठा करते थे। लेकिन ये चूंकि मम्मा का मास चल रहा है तो एक दो बात मैं मम्मा की शुरू करके फिर उसके बाद बाबा पर आते हैं। तो मम्मा जितने समय तक बाबा मुरली चलाते थे तो बस ममा किनारे वाले उस पर बैठ करके पूरा ममा का जैसे पोज होता था और टोटल एक टक बाबा को देखा करते थे, बाबा का एक एक अक्षर मन में उतारा करते थे। और इस कारण से ममा जो भी बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू कहता था ममा उस बात को धारण सहज ही रीति से कर लिया करते थे। तो क्यों, हम लोग का सबका अपना अनुभव भी है, कई कई वर्ष ज्ञान में भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी सुनते हैं ध्यान से मुरली, फिर भी बुद्धि कभी कहीं कभी कहीं जहाँ पर बुद्धि का थोड़ा भी लगाव झुकाव होता है बार बार बुद्धि वहाँ चली जाती है। ये हम सब लोगों का अनुभव है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का ध्यान कोई भी क्लास में आया, किसी कोई थोड़ी आहट हुई आवाज़ हुई तुरंत ध्यान वहाँ चला जाता था, लेकिन मम्मा का देखते थे कि एक टक जब से बाबा की मुरली शुरू होती थी और जब तक याद प्यार अंत तक होता था एक ही पोज में मम्मा बाबा को एक टक देखते थे, उनके आँख नाक कान पूरे के पूरे बाबा में जैसे डेडिकेटेड रहते। तो इस कारण से ममा नंबर वन में भी चले गए और बाबा भी कहते हैं ममा वन प्लस थे। दूसरी बात ममा का, आप सब जानते हैं कुछ दिनों में ममा का दिन भी आ रहा है, जिस दिन ममा ने शरीर छोड़ा, तो वो भी एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत घटना थी। अद्भुत किस लिए कह रहे हैं हम, क्योंकि ममा ने सब जानते हैं मामा की तबीयत तो। ओम शांति। तो जब हम लोग ज्ञान में आए तब तो एक जनरल कंसेप्ट यही था कि हम सब को इकट्ठा ही जाना है, बाबा मामा और सभी बच्चों को इकट्ठा, और इसलिए सब बिल्कुल निस्संकल्प रहते थे। तबीयत भी खराब होती थी कभी, कोई बाबा का आया मामा का आया कुछ, तो ये निस्संकल्प रहते थे ये तो हिसाब किताब है, ठीक हो जाएगी तबीयत। और इस कारण से उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया करते थे। लेकिन हम सबको मालूम है किस दिन मामा ने शरीर छोड़ा, कौन सा जून था, 24 जून या 25 जून, 24 जून। तो मामा ने तबीयत तो थोड़ा खराब चली रही थी मामा की, और तो मामा ने 24 जून को जब शरीर छोड़ा, आप सब भी गौर से सुनना, ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है जो हम सब लोगों को भी अपने जीवन में धारण करनी है। तो जब मामा ने शरीर छोड़ा, मामा सूक्ष्म वतन में गए, तो सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म वतन वासी बाबा बाबा थे, तो वहां बाप दादा ने पूछा मामा को, मामा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो? तो मामा ने थोड़ा देखा और मामा ने कहा, नहीं बाबा मैंने तो नहीं किया। तो बाबा ने कहा, जाओ मामा अभी आपका शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है, सभी बच्चे योग कर रहे हैं, बाबा भी योग कर रहा है, आपका आवाहन भी कर रहे हैं सब, क्योंकि तब तो यही कंसेप्ट था मामा जा नहीं सकती, ये भी कोई पार्ट जैसे मामा दिखा रही है, और जाना तो हम सबको इकट्ठे ही है। तो इसीलिए बाबा ने कहा, जाओ मामा हिस्ट्री हॉल में, और आपका शरीर है, जाओ शरीर में प्रवेश करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। शरीर में प्रवेश करोगे और कर्मातीत माने कर्म करते भी कर्म से अतीत, यानी देखते हुए भी जब शरीर में प्रवेश करोगी तभी तो देख सकोगी, तो देखते हुए भी जैसे न देखने की स्थिति, सुनते हुए भी न सुनने की स्थिति, इस तरीके से बाबा ने मामा को नीचे भेजा। मामा नीचे आई, काफी समय तक नीचे रहे, और नीचे तक काफी शरीर के आसपास आत्मा तो दिखाई नहीं देती सूक्ष्म, लेकिन मामा ने वापस जब काफी समय के बाद ऊपर गए मामा, तो बाबा ने पूछा, मामा अनुभव करके आए कर्मातीत स्थिति का? तो मामा ने कहा कि नहीं बाबा मैं तो नहीं कर सकी। क्यों बच्ची, तुम्हें तो भेजा इसीलिए था कि कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। तो बाबा मैंने तो पुरुषार्थ किया बहुत कि शरीर में प्रवेश कर सकूं, लेकिन शरीर तो जैसे ठंडा पड़ चुका था, उसमें कोई भी हलचल नहीं हुई, और बहुत प्रयास के बाद भी फिर मैं तो वापस आपके पास लौट के आ गई, क्योंकि शरीर में जब प्रवेश ही नहीं कर सकी तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव कैसे करते। तो बाबा ने कहा कि बच्ची देखो एक नियम है कि जब भी यहां से छोड़ के शरीर कोई जाएगा तो परम धाम में अपनी सीट पर जाकर के उसी स्थिति में स्थित होगा जिस स्थिति में उसने शरीर छोड़ा था, यानी कि पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज में उसने जब शरीर छोड़ा और यहाँ पर आके जब पार्ट बजाया और उस पार्ट बजाने के बाद तब आत्मा परम धाम में अपनी सीट पर जाकर बैठ सकती है थोड़े समय, तब जबकि वो उसी हाईएस्ट स्टेज में को उसने प्राप्त किया होगा। तो अभी तुम तो जा नहीं सकती, क्यों? क्योंकि उस हाईएस्ट स्टेज को तो प्राप्त तुमने किया नहीं, अभी अभी कर्मातीत अवस्था का अनुभव किया नहीं है, इसीलिए अभी जाओ, नए शरीर को धारण करो, पार्ट बजाओ, उसमें पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ के बाद जब कर्मातीत स्थिति का अनुभव उस नए शरीर में करोगी, तब कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके उस समय जब फिर आओगी परमधाम में अपनी सीट पर, वो हाईएस्ट स्टेज पर, तब तुम उस समय अपने स्थान पर बैठोगे और उस स्थिति का अनुभव करके फिर उसके बाद आत्मा, फिर तो उन सबको मालूम है जो बाबा ने साक्षात्कार किया था कि भाई स्टार जैसे आ रहे हैं, कोई राजकुमार बन रहे हैं, कोई राजकुमारी बन रहे हैं, तो तब नीचे जा करके अपने पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार शरीर लेंगे, पार्ट बजाएंगे सतयुग में, और फिर उसके बाद पार्ट इस दुनिया में शुरू हो जाएगा। तो ये हम सबके लिए एक चेतावनी जैसी है। बाबा ने कहा, मामा ने तो शरीर छोड़ा, हिसाब किताब जो भी थे सबको मालूम है, अंत में कुछ कैंसर किसी अवस्था थी मामा की और इस कारण से शरीर छोड़ा। तो हम लोग भी चाहे इस शरीर में जितना भी तन मन धन संबंध कोई भी प्रकार की कष्ट हो, कटुता हो, किसी भी प्रकार का दुख का अशांति का अनुभव हो, हमें ये संकल्प कभी भी नहीं आना चाहिए कि मैं ये शरीर छोड़ूं। क्यों? क्योंकि अगर ये शरीर छूट गया फिर तो बच्चा जाकर बनेंगे और कई वर्ष वेस्ट चले जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे बाबा ने तुम्हें इसीलिए बुलाया सबको ये संदेश देने के लिए कि कभी भी किसी परिस्थिति में कोई भी शारीरिक अस्वस्थता हो, धन का कमी हो, तन का संबंधों की कटुता हो, कुछ भी हो, शरीर छोड़ने का संकल्प कभी नहीं आना चाहिए। तो ये बाबा ने विशेष करके मामा को भेजा, और एक मामा के कारण ही देखो इतने वर्ष हो गए मामा को और फिर भी कुछ पता है क्या, लेकिन पुरुषार्थ जरूर मामा का बहुत तीव्र गति का चल रहा है, जिसके के कारण अब अंत का अंत समय जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, वो हम सबको पूरे विश्व भर में कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं पर कुछ हिंदू मुस्लिम का वो चल रहा है वैर भाव, कहीं पर प्राकृतिक आपदाओं का इतना ज्यादा वो चल रहा है। तो इस कारण से अब हमें बाबा ने बताया ये मामा का यह अनुभव। तो ये बताने का भाव यही है कि एक तो हमें बिल्कुल तीव्र गति से पुरुषार्थ करते हुए चलना चाहिए। फिर आते हैं बाबा की बात पर। हमें ये तो जैसा बहन जी ने भी बताया, ये तो सौभाग्य मिला है बाबा मामा की पालना का, लेकिन उससे भी बड़ा एक सौभाग्य ये मिला है कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, तो हम अपना इंजीनियरिंग करने के बाद धनबाद आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद पोस्टिंग हमारी बाबा के प्रमाण ही आसाम में हुई, और अभी वो आसाम में उस समय 1967 में हमने पास किया, और तभी उसी साल ही हमारी पोस्टिंग आसाम में हुई। तो आसाम में जो पहला क्लास ही कहेंगे, तब तो गीता पाठशाला और सेंटर का वो बात नहीं थी, हम अकेले ही उधर वहाँ गए, क्लास से चलते थे। लेकिन अभी ही जैसे कुछ 2018 में 68 में जाकर के पहले क्लास शुरू हुई, और 2018 में दादी जानकी जी के वरद हस्तों द्वारा वहाँ पर शिवसागर नाम की जगह में वहाँ पर दादी जी ने उसकी गोल्डन जुबली 50 वर्ष उस समय पूरा किया, और वो 50 वर्ष जो एक छोटी सी क्लास के रूप में दो एक स्टूडेंट के रूप में शुरुआत हुई थी, वो बाबा ने उस समय दादी जानकी जी के हाथों द्वारा गोल्डन जुबली का वहाँ पर बहुत बड़ा विशाल रूप में पहला वहाँ पर रिट्रीट सेंटर भी बना आसाम का, और वहाँ पर उद्घाटन भी कराया। तो भाव ये है कहने का कि बाबा जो है बच्चों को उस समय अंतिम समय 17 जनवरी को उस समय आसाम में पोस्टेड थे, और आसाम में पोस्टेड होने के बावजूद भी बाबा ने जैसे अंत समय बुला लिया, 17 जनवरी की सुबह हम और हमारे लौकिक पिताजी हम दोनों यहाँ पर पहुँच गए, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का सौभाग्य मिला, और इन आँखों से ही बाबा की वो संपूर्ण विदेही कर्मातीत अवस्था देखी। तो उसमें क्या देखा, जब बाबा की बिल्कुल अंतिम कर्मातीत अवस्था जैसे थी, और अंतर क्या देखा, दो 1962 से लेकर 69 तक कई बार 10-12 बार बाबा से मिलना हुआ, अलग अलग स्थानों पर भी, कानपुर में भी मिलना हुआ, दिल्ली में भी 2 बार मिलना हुआ, मधुबन में तो अनेक बार मिलना हुआ, आदि आदि। लेकिन बाबा की जो अंतिम स्थिति और पहले की जो स्थिति होती थी उसमें एक विशाल अंतर देखा, क्योंकि हम सबको भी कर्मातीत बनना है, और बाबा ने ये जो 3 अक्षर मुंह से निकाले, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, अंतिम दिन, तो ये हमें प्रत्यक्ष साकार रूप में बाबा के मुंह से ये महावाक्य निकले, और ये हमें खुद अपने कानों से सुनने का भी सौभाग्य मिला 18 जनवरी की रात्रि क्लास में। तो उसमें देखा कि बाबा ने ये जो कहा, इस कहने के पीछे भाव क्या था, क्योंकि बाबा की तो अपनी कर्मातीत अवस्था हो गई थी। तो जो बाबा, ब्रह्मा बाबा पहले खुद प्रैक्टिस करते थे, अनुभव करते थे, अनुभव कराते थे बच्चों को, उसके बाद ही बाबा उस बात को कहा करते थे। तो इसीलिए सुनी हम सबने भी वो कहानी कि भाई कोई माता बच्चे को लेकर आई गांधी जी के पास, गुड़ बहुत खाता है, तो गांधी जी ने कहा अच्छा 15 दिन के बाद लाना। 15 दिन के बाद ले तो गई माता बच्चे को लेके, तो बापू ने यही कहा कि भाई गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ से ये नुकसान होते हैं। बस तो माता ने बोला कि बापू ये तो आप बात पहले भी कह सकते थे, तो आप सबको मालूम ही है ये कथा कि बापू ने कहा कि भाई पहले मैं खुद गुड़ खाता था और अगर मैं ये बात कहता उसका असर नहीं होता था। अब इन दिनों में मैंने खाना छोड़ दिया, अब आज जो मैंने कहा है अब तुम देखना इसका कितना असर होता है। यही बात बाबा की प्रैक्टिकल की थी। बाबा ने ना, हम सब ने सुना है, बाबा ने बहुत अभ्यास किया, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, निर्मल आत्मा है, नारायण आत्मा है आदि आदि। और उसके बाद हम लोग देखते थे जब बाबा से मिलते थे, बाबा कहते थे आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे स्वीट चिल्ड्रन आओ, बस बाबा ऐसे हाथ फैला देते थे और हम चुंबक की तरह खींच करके ना बाबा की बाह में एकदम आ जाते थे। और क्या होता था, चुंबक की तरह जब खींच करके एकदम चले आते थे, बस बाबा का स्पर्श होता था, बाबा से नैन मुलाकात होती थी, बाबा की दृष्टि पड़ती थी, हम भी विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते। क्यों? क्योंकि बाबा ने ये अभ्यास किया हुआ था और अभ्यास करने के बाद तब बाबा आवाहन करता था हम बच्चों को और हम बच्चे भी एकदम विदेही हो जाते थे। तो ये विदेही हो जाते थे, फिर क्या होता था, एकदम थोड़े समय के लिए भले पहली बार मिल रहे होते थे, विदेही शब्द भी क्या होता है, अशरीरी क्या होता है, उस समय ये भी मालूम नहीं था पूरा, लेकिन अनुभव ऐसा होता था आत्मा शरीर से जैसे न्यारी हो गई। फिर बाबा धीरे, हाँ बच्चे आओ, धीरे धीरे बाबा प्यार से ऐसा सहलाता था, आओ बच्चे नीचे, तो हम बच्चे फिर शरीर में आने का प्रयास करते थे और शरीर में आते थे और फिर बस आके बाबा फिर हालचाल पूछता था, नाम पूछता था और काफी बातें, कोई बात हमें पूछनी होती थी हम पूछते थे, बाबा को पूछनी होती थी बाबा पूछते थे, और फिर इसके बाद एक जाता था दूसरा आता था। हमें याद है पहली बार जब बाबा से मिले तो बाबा ने पूछा क्या नाम है बच्चे, तो एक्चुअली हमारा लौकिक नाम श्री है, जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण होते हैं ना, और सिंगल सरनेम। तो बाबा ने पूछा, हमने बताया, फिर बाबा ने पूछा क्या बताया बच्चे क्या नाम, तो हमने थोड़ा और लाउडली बोला श्री। अच्छा श्री, देखो अभी तो श्री ब्रह्मा बाबा भी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता, क्योंकि श्री वो ही लगा सकते हैं कौन, जो देवी देवता होते हैं, जिनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अभी न तो हमारी आत्मा पवित्र है, सतयुग से लेकर पार्ट बजाते बताते सतो प्रदान से तमो प्रदान अंत तक आ गई है, और शरीर हमारा अभी तो विकारों की उत्पत्ति है, तो शरीर भी विकारी आत्मा भी विकारी। तो इसीलिए अभी बाबा ने बस, बाबा तुम्हें नाम श्री जैसा तुम्हें बनना है, अभी बाबा तुम्हें नाम बदलता है, तुम्हारा नाम मोहन करता है। तो बाबा ने नाम भी बदल दिया। देखो ये भी सौभाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि बाबा जो है पुरानी बातों को बिल्कुल भुला देना चाहता था। किसी का नाम माया देवी होता था, बाबा कहता था अभी माया का क्या काम, अभी तो तुम्हारा नाम कुछ भी गीता देवी या कोई भी अच्छा नाम लक्ष्मी देवी रख देता था। इसी तरीके से भाव यह है, बाबा ने केवल हमारा ही नाम नहीं बदला, आप सबका भी नाम बदल दिया। अभी आप सबका भी नाम क्या बदल दिया, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो वो नशा एकदम रहना चाहिए कि मैं ब्रह्मा का बच्चा, ब्रह्मा ने मुझे गोद का बच्चा बनाया है, इसीलिए अभी बाबा ने मेरा नाम बदल के ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी करा है। तो वो नशा रहना चाहिए। तो ये जो अंतिम दिन बाबा ने है, वो हमने देखा जब 17 और 18 जनवरी को हम मिले बाबा से। तो पहले तो जब भी मिलते थे बाबा पूछते थे, हाँ बच्चे क्या पूछना है, कुछ पूछते थे बाबा, उसका उत्तर देते थे, समाधान देते थे। लेकिन इन अंतिम दो दिनों में 17 और 18 जनवरी को जैसे ही बाबा के सम्मुख गए, बाबा से दृष्टि ली, तो बाबा ये नहीं पूछता था क्या पूछने आए हो। अंतिम दो दिन में 5-6 बार हम बाबा से मिले होंगे 17 और 18 जनवरी को। बाबा ने कहा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। यानी हमारे मन में जो संकल्प था वो भी बाबा ने बताया और उसका समाधान भी बाबा ने कर दिया। ये है कर्मातीत अवस्था की एक निशानी। जो बाबा चाहता था, जिसको बाबा ने कहा निराकारी स्थिति, मन जीते जगत जीत की स्थिति। जब आत्मा कर्मातीत, और बाबा तो 18 जनवरी को मुरली चला के फिर ये 3 शब्द उच्चारण करके अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये कह के बाबा चले गए। अच्छा निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, ये इस 3 शब्दों का इनका यथार्थ अनुभव करके इस स्थिति में प्रैक्टिस करना। तो निराकारी स्थिति की बाबा प्रैक्टिस भी कराता था और शरीर से भान से मुक्त भी कर देता था, और फिर बाबा उसको हम बच्चों को हो अंत में। इसीलिए बाबा ने ये 3 शब्द कहा। ये शब्द ही नहीं है, ये 3 वरदान है हम सब बच्चों के लिए है। निराकारी क्यों? क्योंकि ये तीनों जो शब्द हैं, आप सब जानते हो इन 3 शब्दों की महत्ता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। जो निराकारी है ये मनसा से कनेक्टेड है, निरअहंकारी जो है वाणी से अहंकार झलकता है, ये वाणी से वो कनेक्टेड है, पूरा जो अहंकार वाचा, मनसा वाचा, और निर्विकारी ये कर्मणा से कनेक्टेड है। इन तीनों के अंदर ही पूरा जीवन रहता है। संकल्प होता है, वाचा होती है, कर्मणा होता है, कर्मणा से संस्कार बनते हैं, और फिर उसके अनुसार ही पूरा का पूरा, एक जीवन नहीं, पूरे 84 जन्म हमारे इन तीनों आधार पर ही चलते हैं। इसीलिए बाबा ने उस दिन इन तीनों का महत्व बताया। और इसमें भी सबसे ज्यादा महत्व तो किसका है? मनसा का, निराकारी भाव का। क्योंकि पहले मनसा में संकल्प पैदा होते हैं, तो मनसा में जब संकल्प, इसीलिए कहा गया है कि मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौत में गंगा। मन सारा चीज ये मन के ऊपर ही निर्भर है। इसीलिए बाबा ने पूरा ज्ञान इतने वर्षों तक, 33 वर्षों तक पूरा सुनाया, लेकिन पूरे ज्ञान को समेट दिया 3 शब्दों में, ये निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो इसीलिए संकल्प जो है, सारा आधार ही हमारा संकल्प पर है। हमें याद है शुरू में बाबा कहता था बच्चे संकल्प में तो तूफान अंत तक आते रहेंगे, लेकिन वाचा से या कर्मणा से कोई भी विकर्म नहीं करना है, इससे अगर विकर्म होते हैं तो वो संस्कार बन जाता है। इसीलिए मनसा में तो अंत तक आएंगे तो पहले ज्ञान बाबा शुरू में मोटा मोटा बाबा ने कहा है ना, सब कुछ बच्चे कहते हैं बाबा ये ज्ञान तो पहले से ही पहले आप बता देते थे, पहले तो बताया आत्मा अंगुष्ठाकार है, आत्मा इतना मोटा है, फिर और सूक्ष्म कैसे बिंदी स्वरूप है। तो बाबा ने कहा सारा कोर्स कोई एक ही दिन में थोड़ी बता दिया जाता है, इंजीनियरिंग का हो, डॉक्टरी का हो, वकालत का हो, पहले मोटी मोटी बात बताई जाती है फिर उसकी गहराई में जाया जाता है। इसीलिए बाबा ने इस बात पर विशेष बल दिया, निराकारी, निरहंकारी और फिर निर्विकारी कर्मों में। तो कर्मणा फिर भी स्थूल है, वाचा उसकी तुलना में सूक्ष्म है और मनसा तो बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तो इसीलिए मनसा, बाबा ने ये प्रैक्टिकल दिखाया भी, अंतिम दिन 17 और 18 जनवरी को मिले तो बस बाबा सीधा ये बच्चे ये पूछने आए हो, मन की बात एकदम नैनों से पड़ी, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, प्रश्न भी बता दिया उसका समाधान भी कर दिया। ये है कर्मातीत स्थिति की, निराकारी स्थिति की, विदेही स्थिति की, आत्म अभिमानी स्थिति की निशानी जो बाबा ने प्रैक्टिकल में दिखाई उस दिन। फिर और क्या दिखाया बाबा ने, जब जितना जितना मनसा में ये स्थिति होती जाती है उतना उतना मनुष्य आत्मा दूसरे जो इसकी कर्मातीत अवस्था होगी वो दूसरे के मन की बात को पढ़ता जाएगा, समझता जाएगा। और जब किसी के मन की बात को हम समझ लेते हैं, कोई आया हमारे सामने उसके मन में कोई प्रश्न है, वो मन का प्रश्न लेके आया तो उसका हम जब समाधान कर देते हैं तो वो व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है। जो भी संकल्प लेके आता है मेरे अंदर ये कमजोरी है, ये कमजोरी निकल जाए, ये है हमारी अंतिम कर्मातीत अवस्था का एक और लक्षण। जब हमारी निराकारी ऐसी स्थिति हो जाएगी किसी के भी मन के बात को परख सकेंगे। तो बाबा का प्रैक्टिकल में देखा, प्रैक्टिकल में शुरू से ही और पहले से ही बाबा की यह स्थिति नहीं बनी। बाबा ने जब देखा ज्ञान में आ भी गए सब, बहनों की कमेटी बना के बहनों के हवाले भी कर दिया सब बाबा, लेकिन मन फिर भी वश में नहीं हुआ। तो क्या किया बाबा ने, बाबा ने मन को पत्र लिखा। सुना होगा आपने, वो पत्र की कॉपी हम बच्चों को दी गई थी, पुराने जो थे उस समय दादा आनंद किशोर ने, बाबा तो सिंधी में लिखते थे उसका हिंदी अनुवाद करके दिया। बाबा ने क्या लिखा मन को पत्र में, हे मन मैं आत्मा राजा हूं और तू तो मेरा कर्मचारी है, तुम्हारे द्वारा तो मैं कर्म करता हूं लेकिन तुम ज्यादा शक्तिशाली हो गए और मुझ आत्मा राजा को तुमने कमजोर कर दिया। ऐसी बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा, हे बुद्धि तुम भी मन के कहने पर पीछे पीछे चलते रहे और तुम दोनों बहुत शक्तिशाली हो गए और इसीलिए भक्ति मार्ग में कहते रहे मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है और मन को वश में करना असंभव है, बहुत कठिन है। तो इसीलिए बाबा ने कहा नहीं कठिन नहीं है, मन तो बच्चे के समान है, उसको हाथ में खिलौना दे दोगे वो खेलता रहेगा, और जब हाथ से खिलौना ले लोगे तो वो परेशान करेगा। इसीलिए मन को क्या करो, अमन बनाओ, मन को जीतो, मन को वश में कैसे करें। तो बाबा ने ये पत्र लिख करके फिर मन और बुद्धि को, और सेकंड पैरा में बाबा ने क्या लिखा कि हे मन, हे बुद्धि, अब मैं तुम्हें कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित होते जा रहा हूं, और इस कारण से अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं, तुम मेरे कर्मचारी हो। राजा के कहने पर कर्मचारी चलता है, न कि कर्मचारी के कहने पर राजा चलता है। तो अब मैं उस स्थिति में, तो हमें भी अगर हमारा मन भागता है, हम भी इसीलिए बाबा ने यही बोला है, रात को सोने से पहले मन बुद्धि संस्कार की दरबार लगाओ। अब बाबा लगाता था दरबार, और इस कारण से मन बुद्धि संस्कार को बाबा ने कंट्रोल पहले किया, तब बाबा ने कहा इनको रात को रोज सोने से पहले इनकी दरबार लगा के इनको हुक्म करो। और कैसे करो, जो अपने सीट है ना, स्वाभिमान की सीट, उस सीट पर स्थित होके तब मन को ऑर्डर दो। होता क्या, हम मन को ऑर्डर देते हैं, मन भाग रहा है, हम खींच के लाते हैं, फिर मन भाग जाता है, क्योंकि मन का जहां लगाव झुकाव है बार बार वहीं भागेगा, खेल के, पैसे में, खाने पीने में, जहां पर भी मन का झुकाव है। लेकिन पहले हम अपनी सीट पर सेट हो, और सीट पर सेट हो के उसके बाद जब मन को ऑर्डर करेंगे तो फिर मन हमारी बात मानेगा, और बाबा की बात भी मन ने तभी मानी जब बाबा ने ये रियलाइज किया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं कलप कलप की विजयी आत्मा हूँ, अपने इस स्वाभिमान में स्थित हो करके मैं विजयी हूँ। कलप पहले भी मैंने मन को ऑर्डर दिया था और मन ने मेरी बात मानी थी, मैं मन के ऊपर विजयी बना था। ये ना हो कि पता नहीं बन सकूंगा कि नहीं, मन तो बार बार भाग जाता है, बड़ा चंचल है, नहीं, मैं वही कलप पहले वाली विजयी आत्मा, मैं आत्मा, अब मन को मेरी बात माननी ही है, बुद्धि को मेरी बात माननी ही है। अब मन बुद्धि जब मेरी बात मानते हैं तो मैं कलप पहले की तरह विजयी बनती जा रही है। तो ये निराकारी स्थिति में अपने को हमें स्थित करने के लिए बाबा ने जैसे मन को पत्र लिखा, ऐसे ही हम भी देखें कि क्या मुझे आवश्यकता है। अगर आवश्यकता है तो भले मन को पत्र भी लिखें, मन से बात करें, रूहान करें, मन को ऑर्डर करें, ये मन तुम्हें मेरी बात माननी है, क्योंकि मैं राजा हूं, तुम मेरे कर्मचारी हो। इस तरह जब मन को एक बार, दो बार, चार बार ऑर्डर करेंगे तो मन को हमारी बात मानने की आदत पड़ जाएगी, अब वो हमारी बात मानने को मजबूर हो जाएगा। तो एक तो ये बाबा ने जैसे बताया, इस स्थिति में अपने को वो करो। और मन भी जो है, जब मन ऐसी स्थिति में होता है तो क्या स्थिति क्या होती है, पहचान क्या होती है, मानो हमारी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी खराब है, या तो थर्मोमीटर से देखेंगे बुखार है, या ब्लड प्रेशर देखेंगे बीपी कम है या ज्यादा है, पता चलेगा तबीयत खराब है तो फिर वैसी दवाई लेते हैं। ऐसे ही मन को हमें खुद देखना है कि मन कहाँ भागता है, उसके लिए हमें खुद युक्ति रचनी है। क्योंकि कर्म भोग भी हैं, हिसाब किताब भी हैं, बाबा के भी हिसाब किताब होते थे, और बाबा के जब हिसाब किताब होते थे तो क्या होता था, मुख्य खांसी रूपी हिसाब किताब। तो जब खांसी आती थी बाबा को तो बस ऐसे जब मुरली चलाते चलाते खांसी आ जाती थी तो बाबा ने क्या अपने लिए युक्ति रची हुई थी, पास में ही लक्ष्मी नारायण का, राधे कृष्ण का चित्र होता था ट्रांसलाइट का, और एक तरफ तो खांसी आ रही है, बाबा की आंख में पानी भी आ जाता था, हम लोगों को होता था देखो बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है जैसे, और दूसरे सेकेंड ही बाबा कहते थे बच्चे देखो अभी तो ये शरीर भी तमो प्रधान है, आत्मा भी तमो प्रधान है, हिसाब किताब है, खांसी आ रही है और कष्ट हो रहा है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा मिचनू कृष्ण बनेगा, कल बाबा जाके ये पुराना जो है हिसाब किताब जब चुप्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा, बस कुछ खांसी नहीं रहेगी, कोई तमो प्रधानता न शरीर में रहेगी न आत्मा में रहेगी, और बस बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, और रास विलास खेल कूद आनंद सब प्रकार के ही सुख। तो खांसी कहाँ चली जाती थी पता ही नहीं चलता था। ऐसी हमें अपने लिए खुद युक्ति रचनी है कि मेरा जो हिसाब किताब है वो कैसे मुझे चुप्तु करना है। तो वो हिसाब किताब और कोई नहीं है, हरेक अपना अपना हिसाब किताब खुद जानता है, जितना खुद जानता है या बाबा जानता है उतना दूसरा कोई नहीं जानता। तो इसलिए एक तो बाबा ने ये निराकार, दूसरा है निरहंकारी है बोल के साथ, क्योंकि बोल ऐसी चीज है, मन के अंदर क्या चल रहा है वो तो हमें हमारे सिवाय किसी को पता नहीं चलता, लेकिन बोल से सारी दुनिया को पता चल जाता है। बोल मीठा बोल, इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा बोल होना चाहिए, अक्सर हमारी बहनें भी बोलते हैं हम सब लोग कि बोल से ही महाभारत हो गया, बोल से ही कोई तख्ते पर चढ़ा देते हैं या तख्त मिल जाता है, बोल पर ही सारा जीवन की सफलता और असफलता का आधार है। इसीलिए ये निश्चय करके चलना चाहिए कि बोल से मेरे किसी को कष्ट ना हो। जो बाबा कहता है ना, अगर दुख दिया तो दुखी होकर के मरेंगे, इसीलिए कष्ट टंग जवान से ही बोल निकलता है ना, तो ये भी कह देते हैं टंग जवान में, टंग हैज गॉट नो बोन बट इट ब्रेक मैनी बोन्स, जवान में कोई हड्डी नहीं होती है लेकिन बहुतों की हड्डियां तोड़ देती है, कटु वचन बोला कष्ट हुआ बस अंदर ही अंदर जीवन पर्यंत वो दुख चलता रहता है। इसीलिए वाचा का जो बात है वो वाचा के द्वारा इतना मीठा बोल होना चाहिए, इसीलिए जब मीठा बोल होता है ना बस वो मीठा बोल जो होता है वो व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो आवश्यकता इस बात की, एक तो मनसा को निराकारी और वाचा को, बाबा का कितना साकार बाबा के बोल, हम तो देखते थे ऐसी ऐसी परिस्थिति आती थी और बस बाबा तो हर परिस्थिति में भी ना आओ बच्चे मीठे बच्चे, कई आके बहुत बाबा को कुछ बोल देते थे किसी भी प्रकार का, लेकिन बाबा हमेशा आओ बच्चे मीठे बच्चे बोलो बच्चे, बस हमेशा बाबा के मुंह से मीठे बोल ही निकलते रहते थे। ये वो, और कर्मणा निर्विकारी, जैसे बोल के द्वारा प्रकट होती है व्यक्ति का हृदय, क्या मन में संकल्प चल रहे हैं, क्या अंदर शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, वो ही शब्द फिर वाचा के द्वारा दूसरे व्यक्ति और सब तक पहुंचते हैं। ऐसे कर्मों के द्वारा हम निर्विकारी वो कर्म स्थिति होती है। तो वो हमें वो देखना है कि किसी भी प्रकार से, तो इसीलिए बाबा ने कहा है हाँ, हमारी स्थिति ऐसी हो सतयुग में। अक्सर करके क्या होता है, हमारा बस परिवार अब यही है, लौकिक दुनिया है, थोड़ा बहुत कुछ संबंध कार्य अर्थ भले चाहे हो, लेकिन परिवार हमारा यही है। यही परिवार सतयुग में जाएगा, और ये परिवार जब सतयुग में जाएगा तो इस परिवार के साथ ही हमारे सारे संबंध होंगे। लेकिन अक्सर देखा क्या गया है, अनुभव आप सबका भी, जब हम नए ज्ञान में आते हैं बहुत सबसे मीठा मीठा संबंध होता है, हर एक 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 व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे कई बार मनमुटाव किन्हीं के प्रति हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, लोगों से बातचीत करने के दिल नहीं होती, कईयों से गलत फहमी होती है, वो भी सामने आ रहा है इधर से हम जा रहे हैं, वो उधर से निकल जाएगा, हम इधर से निकल जाएंगे, ओम शांति नहीं होती, बातचीत नहीं होती है। इन ऐसे संबंध के साथ तो सतयुग में जा नहीं सकेंगे, सतयुग में तो सबके साथ बहुत मीठे संबंध होंगे। तो इसीलिए दादी कहते थे, बड़ी दादी हमेशा, कि जब भी संबंधों में कहीं पर भी थोड़ा तनाव महसूस हो, इनके साथ मेरे इतने नॉर्मल संबंध नहीं है, तो क्या करना चाहिए, उनके साथ मिल करके संबंधों में मधुरता लानी चाहिए। बैठो भाई जी बहन जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय पहले तक हमारे संबंध बहुत मधुर थे, अभी कुछ थोड़ा सा उतने मधुर नहीं रहे हैं, आइए हम बैठ करके बात कर लें। हो सकता है कि कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कहीं पर तनाव हो, क्यों, क्योंकि इन संबंधों के साथ तो हम सतयुग में जा नहीं सकते। इस कारण से कहीं पर भी किसी के साथ संबंधों में कटुता है, उनके साथ मिलजुल करके वो उस संबंधों में पुनः मधुरता लाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से बाबा अंत समय में पूरे ज्ञान का सार, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी, ये जो बता के गए हैं, तो पल पल पर हमें ये महसूस होना चाहिए। अंत समय ये ही चीज, क्योंकि अंतमति सोगति का जो गायन है ये इसी आधार पर ही है, मनसा वाचा कर्मणा अंतमति सोगति। तो अंत में अक्सर करके देखा गया है, आत्मा के प्राण, आत्मा तब तक नहीं निकलती है, कहीं ना कहीं अटकी रहती है, जैसे व्यक्ति के जहां उसका लगाव झुकाव या तो अति प्रेम होगा या कहीं अति दुश्मनी होगी, वहीं पर वही याद आते रहेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा है, अब क्या होना चाहिए, न तो किसी के साथ अति लगाव झुकाव, अति प्रेम, न कोई दुश्मनी, सबके साथ समान व्यवहार, मधुरता का व्यवहार हो एक जैसा। ये बड़ा कठिन है, लेकिन देखना है सबके साथ हमारा व्यवहार जब ऐसा होगा, तो ये अंतमति सोगति का ये हमें संपूर्णता की तरफ ले जाएगा। ब्रह्मा बाबा को भी देखा, बाबा को पहले से अंतिम समय आभास हो गया था, बस जो अंतिम बाबा की एक बात बता के मैं पूरी करता हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा को अंत समय तीन चार बातों का आभास हो गया था। कैसे? कि एक तो ये कि ये शरीर मेरा छूटने वाला है, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था की तरफ मैं चल पड़ा हूं। तो इस कारण से बाबा ने उस स्थिति का अनुभव किया, तो बाबा को अनुभव हुआ कि मेरे तीन चार काम तो अधूरे रह गए हैं, पेंडिंग रह गए हैं। तो बाबा ने अंत समय में एक तो सारे पत्रों के उत्तर लिखे। पहले तो पत्र ही लिखे जाते थे, तो एक काम ये अधूरा था, बाबा के ये पूरा किया। दूसरा कार्य था बाबा का कि जो नक्की लेक के पास म्यूजियम है ना हमारा, वो बिल्डिंग कईयों की थी कि ये इधर प्रदर्शनी लगाई थी, बहुत सेवा हुई थी, अब यहाँ पर हमें ये बिल्डिंग ले लेनी चाहिए। और तीसरा ये आवाज था कि ये कर्म भोग के ऊपर योग बल के द्वारा संपूर्ण विजय होनी चाहिए। अगर कर्म भोग कुछ रह गया अंत समय तो वही याद आता रहेगा, यहाँ दर्द हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है, ये प्राण नहीं निकल रहे हैं, नहीं। तो इसीलिए एक ये अभ्यास, तो बाबा का अंतिम दिन हमने देखा, लास्ट मुरली हमने सम्मुख सुनी बाबा की 18 जनवरी की, बाबा सम्मुख मुरली चला रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सब लोग 8-10 व्यक्ति थे बाहर के, बस कोई भी नहीं था। तो वो सुनते समय एक अनुभव हुआ कि उस दिन बाबा को न तो एक बार खांसी आई, न गला साफ करने की जरूरत पड़ी, कोई भी कर्म भोग जो है रास्ते में नहीं आया, योग बल ने संपूर्ण रीति से कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। और चौथी बात, रोज क्लास होती थी 9:15 बजे, उस दिन बाबा ने कहा आज बाबा 7:30 क्लास कराएगा, सब लोग भोजन करके आए, ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि बाबा को मालूम था बस क्लास करा के बाबा बच्चों से छुट्टी लेके बाबा चला जाएगा और दादी जी के हाथ में हाथ नैन मुलाकात करते हुए छुट्टी लेगा। तो बाबा को तो आभास था। ऐसे ही हम बच्चों को भी, गौर करना आप, हम बच्चों को भी पहले से आभास हो जाएगा अब मैं शरीर छोड़ने वाला, मेरी कर्मातीत अवस्था होती जा रही है बाबा की तरह। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के समान जो है ना, हमें बाबा के समान ही बनना है, बाबा के साथ ही साथ कर्म परम धाम जाना है, और फिर परम धाम से सतयुग में ब्रह्मा बाबा के साथ ही साथ पाठ बजाने। तो इस तरीके से हमारा ये आभास अगर हमें नहीं हुआ पहले से कि मैं, ये मेरा अंतिम दिन है, अंतिम क्षण है, बस मेरी भी कर्मातीत अवस्था हुई, सारे हिसाब किताब मेरे चुकतू हो रहे हैं, तो कर्मातीत अवस्था अगर हमने प्राप्त नहीं की तो मम्मा की तरह फिर हमें नया जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए अंतिम दिन बाबा को ने मुरली चलाई, और मुरली के बाद अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, बाबा गया और दादी के हाथ में हाथ नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने विदाई ली। लेकिन ब्यूटी क्या थी कि अंत मति सो गते, बाबा ने मति तो अपनी ठीक कर ली थी, लेकिन ये शरीर जो है 5 तत्वों का, इन तत्वों को भी बाबा ने बिल्कुल पवित्र कर लिया था। तो हमें भी अंत समय ये देखना है कि ये शरीर के अंदर बस मुझे इस 5 तत्वों को भी प्रतिदिन कुछ योगदान करना है, जैसे जानकी दादी को भी ना, मुझे याद है जानकी दादी को बाबा ने एक बार बोला कि बहुत तबीयत खराब हो गई, 1999 का 31 दिसंबर था, दादी विदेश से अहमदाबाद तक तो आ गए लेकिन अहमदाबाद से यहाँ तक नहीं आ पाए। बाबा तो 31 दिसंबर को आता ही, आपको मालूम है। तो दादी जी के पास, गुलजार दादी के पास, बड़ी दादी जी और निर्वैर भाई गए और बताया कि बाबा, दादी को तो बाबा ने मतलब डॉक्टरों ने छुट्टी नहीं दी है, बोला है बस अब कुछ नहीं हो सकता, जिसको भी बुलाना हो बुला लो। और ये दादी की बहुत ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज है। तो बाबा ने सुना 31 दिसंबर 1999 की बात, और बाबा ने कहा नहीं बच्ची, उसे कुछ नहीं होगा, वो प्रकृति जीत आत्मा है। तो प्रकृति जीत, देखो उसके बाद दादी लगभग 20 साल तक रहे, और 20 साल तक कितने देश विदेशों में सेवा की। तो ऐसे ही हमें भी, एक तरफ तो मन जीते जगत जीत, और दूसरी तरफ प्रकृति जीते जगत जीत बनना है। और जब जितना हम ये बनेंगे तो हम इन तीनों शब्दों का यथार्थ प्रैक्टिकल अनुभव अपने जीवन में करते भी चलेंगे, और लास्ट डे जिस दिन हमें अपने देह का त्याग करना होगा, तो ब्रह्मा बाबा की तरह हमें भी संपूर्ण रीति से आभास हो जाएगा कि हाँ अब मैं छुट्टी लेके जा रहा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। भाई साहब का भी बहुत 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 थैंक्स करते हैं, पुनः ताली बजा करके। भाई साहब इस प्रकार से वर्णन कर रहे थे जैसे हम भी सब पहुंच गए थे ना उस टाइम में, है ना, जैसे जैसे बोल रहे थे तो हम सबको भी फीलिंग आती थी, इतना अच्छे से भाई साहब वर्णन कर रहे थे। तो भाई साहब का बहुत बहुत थैंक्स करेंगे। Thank you.